ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वैच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सम्यकदर्शनचरणगुण पायकुकर्मकृपाय केवलज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते हो तत्त्व श्रद्धा चरण धारि केवल नहे पावे पद निर्वाण।
आज से हम यहाँ सम्यक दर्शन होने से पूर्व जो पांच लब्धि होती है नियम से होती ही है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये पंच लब्धि क्या होती है, सम्यक दर्शन क्या होता है और ये पांच लब्धि क्या होती है, ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देखो, हम स्वयं जीव है और हमें अपने को पहचानना है। अनादि से क्या होता आया है कि यह जीव किसी न किसी पर्याय में किसी न किसी देह को धारण करता हुआ आया है। अनादि से ही जीव और कर्म का एक दूसरे के साथ बंधी हुई अवस्था पाई जाती है, किसी ने उसको मिलाया नहीं है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है या अन्य कोई है नहीं है कि जिसने उनको मिलाया होगा। तो एक कर्म के साथ मिली जुली अवस्था जीव की अनादि से ही पाई जाती है और इन कर्मों के उदय के निमित्त से वहां जीव अन्य अन्य शरीरों को धारण करता है। तो शरीर और जीव एक साथ रहते आए हैं, जिस शरीर को पाता है उस शरीर रूप मैं हूं ऐसी इसकी बुद्धि ऐसी मान्यता होती है। अभी हम मनुष्य शरीर में हैं, तो हमने अपने को मनुष्य ही माना है, अपना उससे भिन्न अस्तित्व है, मैं ज्ञान स्वरूप ऐसा भिन्न तत्व हूं, भिन्न द्रव्य हूं, ये पता नहीं चलता है। तो ये हमें कैसा पता चलेगा, तो जिनेंद्र भगवान ने इसका उपदेश दिया है, उसके उपदेश के अनुसार हम विचार करेंगे तो वो बात सत्य है, ये बात हमारे ख्याल में आती है। और बस ज्ञान के द्वारा ही, सही ज्ञान करके ही हम अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। हम स्वयं आत्मा है, शरीर से भिन्न है, इसका अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं। तो जब ऐसी अपने आत्मा की पहचान होती है, वो कैसे होती है, कौन से प्रोसेस से, कौन से विधि से होती है, ये पूरे इसमें समय दर्शन के पहले क्या क्या होता है, कौन कौन सी बातें आवश्यक होती ही है, ये बात की यहाँ चर्चा चलेगी। तो उसको कहते हैं यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व। पहली बार जब समय दर्शन होता है, जीव को अपने आत्मा का अनुभव होता है, उसको कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व। जब तक जीव को मैं देह हूं ऐसी बुद्धि चलती है और अपने में उठने वाले जो मोह राग द्वेष वो मेरा स्वरूप है ऐसे लगता है, तब तक उसको मिथ्यात्व दशा होती है। मिथ्यात्व यानी मिथ्या मान्यता, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या उसका आचरण। तो जब तक ऐसी मिथ्यात्व दशा चलती है, तो उस मिथ्यात्व दशा में जब उसको सही उपदेश मिलता है, उस पर विचार करता है, तो उसके अनुसार उसमें जो कोई परिवर्तन होते हैं कर्मों में और जीव के परिणामों में, तो उसका यहां पूरा ही वर्णन करने वाले हैं। अब यहां तो कर्मों की बात चलेगी, वैसे यहां कर्मानुयोग का विषय चला था, कर्म की थोड़ी थियोरी ली थी, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा जो वर्णन है यहां पर, ये लब्धिसार नाम का जो ग्रंथ है, वो लब्धिसार ग्रंथ के आधार से यहां चर्चा की हुई है। लब्धिसार ग्रंथ पर पंडित टोडरमल जी ने भी टीका लिखी है वही उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। उसमें ये उन्होंने अपनी ढूंढारी भाषा में इसका वर्णन किया है और यहाँ हिंदी गुजराती में मराठी में उसका चर्चा इसमें पुस्तक के रूप में आपके सामने है। इसके लिए यहाँ जो कर्णानुयोग के विषय हम सीखते, देखो भगवान की वाणी में चारों ही अनुयोगों का वर्णन आता है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में सिद्धांत होते हैं, जैसे इस विश्व में 6 द्रव्य है, उन द्रव्यों का क्या स्वरूप है, गुण पर्याय क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, उनके कैसी व्यवस्था होती है, ये सारा जो वर्णन है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य कर सकता है या नहीं करता, नहीं करता तो क्यों नहीं करता, इसको कहेंगे पूरा द्रव्यानुयोग। उसमें सिद्धांत बताए जाते हैं, कार्य कैसे होते हैं, निमित्त उपादान जो कारण होते हैं उसमें से सच्चा कारण कौन है। तो प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य ने 6 मूलभूत वस्तुएं हैं इस विश्व में। देखो ये बात यहां हुई थी, फिर भी हम थोड़े रिविजन करके चलेंगे। इस विश्व में 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण सहित है, यानी गुणों के समुदाय को ही हम द्रव्य कहते हैं। तो गुण किसी ने बनाए नहीं है, ना ही उसमें नए भरे जाते हैं, ना ही निकाले जाते हैं। तो ये गुणों का जो पिंड है उसी को द्रव्य कहते हैं, और इनकी अवस्थाएं हर समय चलती रहती है। उसके क्या कारण है, कौन से गुण है, इसकी चर्चा चली थी ना, याद है ना, कौन कौन से सामान्य गुण देखे थे, याद है कुछ? हाँ, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये तो 6 सामान्य गुण है तो अनंत, परंतु हमारे ऊपर दया की आचार्य महाराज ने कहते आपको बिजनेस में फुर्सत कहाँ है, ये 6 तो सीख लो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये द्रव्यों की कैसी व्यवस्था होती है, प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है और उसकी जो कोई पर्याय अवस्था है हर समय बदलती है, वो बदलने के लिए वो सक्षम है, पूर्ण अपने में सेल्फ सफिशियंट है। कोई दूसरा आकर मेरा कार्य कर दे ऐसी बात नहीं है। हमारे भी जो ज्ञान की पर्याय है वो स्वयं अपने से होती है, ज्ञान गुण है तो हर समय उसकी अवस्था चलती है। तभी ज्ञान में कुछ हमारी वृद्धि हुई, क्यों चेतना बहन, अभी हम समझाएंगे तो आप समझेगी ना क्यों। तो यहाँ प्रत्येक जीव की अपनी अपनी ज्ञान पर्याय स्वयं से होती है, तो ये अपना उपादान से ही कार्य होता है, तब सामने कोई ना कोई आवश्यक वैसा नियमित बन जाता है। परंतु सच्चा कार्य किससे होता है, तो उपादान से होता है। तो मैं अपने से ही सब जानने वाली हूँ, और सामने उस समय कोई पुस्तक हो, कोई सिखाने वाले हो, कोई आचार्य हो, ऐसी बातें बन जाती है, सहज बन जाती है। तो ये सभी जो सिद्धांत है ये द्रव्यानुयोग के सिद्धांत है। कर्णानुयोग में तो निमित्त की भाषा में कर्मों का निमित्त कैसे होता है उसको समझाया जाता है। हम कर्णानुयोग पढ़ते समय बात कथन तो करेंगे निमित्त से, परंतु द्रव्यानुयोग के सिद्धांत को ख्याल में रखकर इसको सीखना है। नहीं तो क्या होता है, कर्म के उदय के ऐसा होता है, कर्म के उपशम से ऐसा होता है, ऐसी जब हम बातें सीखते हैं तो हमें लगता है अरे हमें कर्म में कुछ करना चाहिए, क्योंकि निमित्त की भाषा है। कर्म के उदय के कारण मुझे क्रोध आया कहेंगे तो हम क्या करें, हम तो नहीं करना चाहते पर कर्म का उदय आया इसलिए हमने किया। वहां भी उपादान की मुख्यता से लेना है कि हम अपने उपादान से क्रोध रूप परिणमित हो रहे हैं, और तब सामने क्रोध कर्म का उदय पाया जाता है। क्योंकि हम तो अच्छे रहना चाहते हैं ना, और क्या करें, हम तो क्रोधी नहीं होना चाहते। हम कहते हैं हम तो बिल्कुल शांत है, तो ये बच्चा जब मस्ती करता है, परेशान करता है, तो हमको क्रोध आता है, नहीं तो हम बहुत अच्छे हैं। यानी हम निमित्त से ही कार्य होता है ऐसा मानते हैं। तो कर्णानुयोग की जब जब हम बात सीखेंगे तो निमित्त होता अवश्य है, परंतु कार्य उपादान से होता है, फिर भी वहां अनुकूल कौन सा निमित्त पाया जाता है इस कथन करने के दृष्टि से वहां कर्म की ओर से बात की जाती है। तो उसको हम पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि निमित्त है जरूर, तो उसका ज्ञान भी होगा। क्योंकि अगर हम उसको मानेंगे नहीं, वो है ही नहीं ऐसा कहेंगे, तो हमारा ज्ञान झूठा हो जाएगा, और निमित्त हमारा कार्य कुछ कर देगा ऐसा मानेंगे तो हमारी श्रद्धा वो झूठी हो जाएगी, वो खोटी हो जाएगी। तो इसलिए हमें जैसा जो है उसको वैसे में जानना है, बस इतना ही करना है। तो ये सारी बातें यहां चलेगी क्रम से। चरणानुयोग में तो आचरण की मुख्यता से कथन होता है। जब जीव ने जान लिया है कि मैं भिन्न हूं और शरीर भिन्न है, फिर भी उसके परिणामों की ऐसी मंदता होती है तो उसके परजीवों को अपने से कोई दुख न पहुंचे, इस तरह से उसके जो कोई आचरण होते हैं तो उसकी भाषा ऐसी होगी, ऐसा करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि तो समझता है, ये जब सारी बातें बताए ना करना चाहिए तो ये शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं, मुझे ये मेरा कर्तव्य, ऐसा मान लेता है। परंतु उसमें भी करणानुयोग और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सहित अगर हम उसको समझेंगे तो वहां भी हमारी कोई भ्रांति नहीं होगी। प्रथमानुयोग तो समझते हैं कि जो पहले तीर्थंकर या अन्य कोई महापुरुष हो गए हैं, वहां भी कैसे पुण्य पाप के परिणामों के कारण जीव को कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है, बड़े बड़े राजा और चक्रवर्ती भी कैसी हालत हो जाती है कि वो सब त्याग कर उन पर कोई संकट आता है। तो ये पुण्य का और पाप का कोई भरोसा नहीं है। हम समझते कि वर्तमान हमारे पुरुषार्थ से हमने ये सब धन कमाया, हमने इतनी बुद्धि चातुर्य चलाया इसलिए हमने ये सब पाया, तो ये सारा है पूर्वकृत पुण्य का फल है। ये सारी बातें प्रथमानुयोग में हमें जानने को मिलती है। परंतु उसमें भी जो महान पुरुष हैं, इन संयोगों का भी त्याग कर कर्मणी अवस्था धारण करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, तो हम भी उसके द्वारा उनका आदर्श सामने रख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए प्रथमानुयोग की भी बातें शास्त्र में आती है। तो ये चार अनुयोग की बात हुई, उसमें से अभी हम करणानुयोग के माध्यम से कुछ सीखेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो आपका कर्तव्य है कि बीच में पूछ लेना। ऐसा मत समझना कि बाकी लोग जानते हैं मैं कैसा पूछूं, बिल्कुल पूछना। क्योंकि क्या है कि हमें तो ये शब्दों के आदि हो गए ना, तो वो शब्द हम कहेंगे तो आपको शायद उसमें से कोई पता नहीं चलिए क्या कहना चाहते हैं, उस शब्द का अर्थ तो मालूम नहीं है। बिल्कुल बीच में रोक कर पूछ लेना, ऐसा नहीं समझना कि इसमें स्वाध्याय में भंग होगा। समझने लेके पूछते हैं ना, ये भी स्वाध्याय का अंग है। प्रश्न करना और उसकी चर्चा करना ये भी स्वाध्याय है। हम तो स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो समझना मूल बात है और समझ के हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ ये हम जो पुस्तक का नाम है प्रथमोपशम सम्यक तो पूर्व की पंचलब्धि, पांच लब्धि, तो उसका तो हम क्रम से नाम का भी अभ्यास करेंगे, क्या क्या कहना चाहिए, प्रथमोपशम क्या है, सम्यक तो क्या है, पंचलब्धि क्या है, ये सब जानने के पहले थोड़ी कर्मों की चर्चा यहां चलेगी। हमने देखा करणानुयोग में भी देखा और इसमें भी शुरू में देखेंगे अभी हम कि जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, ये मूल बात। ऐसा नहीं था कि पहले जीव प्योर था और बाद में कोई कर्म आके मिले हो। जैसे सुवर्ण पाषाण है तो वो तो मिट्टी से मिली हुई अवस्था में पाया जाता है, खदान में जो मिलता है बाद में वो प्रोसेस करके प्योर गोल्ड बनाया जाता है। ऐसे ही यहां पर जीव और कर्म जो है अनादि से ही, अभी जो वर्तमान में जो सिद्ध अवस्था में हमारे 24 तीर्थंकर जो है अभी सिद्ध भगवान की अवस्था में है, वो भी पूर्व संसार दशा में थे और वे भी अनादि से कर्मों से बंधी हुई अवस्था में थे। अब उसका अभाव कैसे कैसे होके वो अरिहंत और सिद्ध बन गए हैं, हम भी वैसे बनने वाले हैं सब, तो ये प्रोसेस क्या है वो हमको देखना है यहां पर। तो ये कर्म होता क्या है उसको पहले में पहले देखेंगे। हमने अभी भी 6 द्रव्य देखे, 6 द्रव्यों के नाम, तो उनमें से ये कर्म कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य की भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है, उसमें से एक कारमाण वर्गणा नाम का जो द्रव्य है, यहाँ बात हुई थी वर्गणाओं की, 5 वर्गणा वगैरह हुई थी, हाँ ले लेंगे आप आगे। तो उसमें से जो कर्म जिससे बनते हैं उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो वो है कारमाण वर्गणा। देखो पुद्गल जो है पुद्गल की वैरायटी बहुत है, यानी परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते, एक एक परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते। ऐसे इस विश्व में अनंत पुद्गल परमाणु है। कितने अनंत है मालूम है आपको?
अनंत
अनंत, क्योंकि जीव ही अनंत है। तो जीव अनंत है, तो उस अनंत को अनंत बार आपस में वर्ग 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 करते जाओ, तो उसको जो कोई संख्या आएगी उस उतनी तो पुद्गल की संख्या है। देखो मैं आपको एक छोटा गणित बताऊंगी। दो का वर्ग यानी स्क्वायर कितना है?
चार।
चार का वर्ग?
सोलह।
सोलह का वर्ग?
256।
256 का वर्ग? 65,536, जिसको हम पनट्ठी नाम से जानते हैं। और उसका वर्ग करें तो कहेंगे हमको वो कैलकुलेटर चाहिए। तो उसका नाम है बादल। 42 से शुरू होती है इसलिए वो बादल उसका नाम है। और उसका वर्ग करो तो इकट्ठी, 18 से शुरू होता है इसलिए उसको इकट्ठी कहते हैं। 20 डिजिट है वो। तो 5-6 बार वर्ग किया तो इतना हुआ। किसका वर्ग किया था? दो का। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट किससे लेंगे? दो के बदले जीव, जो अनंत है। जीव कैसे अनंत है हमने देखा था। एक निगोध शरीर में तो अनंत जीव, कितने अनंत? आज तक अनादि से जितने सिद्ध हुए उनसे भी अनंत गुणे जीव एक निगोध शरीर में। तो पूरे विश्व में तो पूरा सूक्ष्म निगोध तो पूरे लोकाकाश में भरे हैं, तो कितने अनंत जीव होगे? खाली निगोध में इतने हैं, बाकी वनस्पति काय का अलग, पृथ्वी काय का अलग, जल काय का अलग, सब अलग, देव अलग, नारकी अलग। तो इतने सारे जो अनंत जीव है उसकी संख्या स्टार्टिंग प्वाइंट, उसका वर्ग करो स्क्वेयर, उसका फिर दोबारा वर्ग करो, उस वर्ग का वर्ग करो। ऐसे कितने बार करना? अनंतानंत बार करना। तब पुद्गल परमाणुओं की संख्या थी। जिनेन्द्र भगवान के पास सब हिसाब तैयार है। क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान के द्वारा जाना, और हम तो क्षोभक्षम ज्ञानी, ऑर्डिनरी है ना ज्ञान अपना। जैसे समुद्र का पानी गिनना है और हम चले एक छोटा मग लेके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम 8 घंटे तो ट्रैवल करके आए, पूरा समुद्र देखा है इतना हमने अभी, तो कैसा नापेंगे उसको? तो यहाँ तो जिनेन्द्र भगवान का जो ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, जिसको हम सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, उन्होंने ये सारी बातें प्रत्यक्ष जानी है और बताई, जिसको हम आगम कहते हैं। और आगम पढ़कर, आगम में से हम पढ़कर उसको समझकर हम भी जान सकते हैं। कितना? जितना केवल ज्ञानी ने जाना। केवल ज्ञानी ने इस विश्व में कितने द्रव्य देखे जाने? 6 द्रव्य जाने। और हमने कितने जाने? 6। तो हमारा ज्ञान भी केवल ज्ञान जैसा है। केवल ज्ञानी ने जाना है कि जीव अनंत है, और हमने भी जाना जीव अनंत है। उन्होंने जाना पुद्गल अनंत अनंत है, हमने भी जाना पुद्गल अनंत अनंत है। जो जो उन्होंने जानकर बताया, हमारी यदि श्रद्धा नहीं होती तो हम क्या, किसने जाना? हम नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनका ज्ञान खोटा है, और जिनको श्रद्धा है वो केवल ज्ञानी ने जैसा जाना है वैसा वे भी जानते हैं, तो उनका ज्ञान सही है। तो हमें कितना आसान है ना, केवल ज्ञानी ने तो जानकर बताया और हमको बस शास्त्र पढ़े और हमने जान लिया, और उसका विश्वास है तो हमारा ज्ञान सही है, और अविश्वास है तो हमारा ज्ञान झूठा है। क्योंकि हम देखते हैं ये इसमें इतने प्याज में अनंत जीव है, तो हम क्या कहते हैं? किसने देखा? किसने देखा? तो केवल ज्ञानी ने देखा। तो केवल ज्ञानी होते ही नहीं, हम नहीं मानते। तो भाई नमोकार मंत्र क्यों कह रहे हैं? नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम कहते हैं, तो अरिहंत का और सिद्धों का स्वरूप क्या है? तो सर्वज्ञ वीतरागी है। वीतरागी है तो झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि राग द्वेष तो है नहीं है, और सर्वज्ञ है यानी सब कुछ जानकर वो कह रहे हैं। तो हम जब अरिहंत कहते हैं तो हमें उनके केवल ज्ञान का और वीतरागता का पता होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें अभी हम पुद्गल की बातों से उनका हमने स्मरण किया है कि पुद्गल अनंतानंत है, ये केवल ज्ञानी ने जानकर बताया। तो हमें, मुझे तो बहुत सारी बातें इसमें से याद आ रही है, उसको कट शॉर्ट करके हम अपना मूल विषय चलाएंगे आगे। तो हम वर्गणा की बात देखते देखते वो पुद्गल को याद किया था हमने कि पुद्गल इतने परमाणु है, तो कुछ परमाणु तो सिंगल सिंगल परमाणु पड़े हुए हैं इस विश्व में, कोई तो दो दो परमाणु जुड़कर जिनका स्कंद होता है, आपस में बंध होता है, उसमें विशिष्ट स्निग्धांश और उक्षांश के कारण पुद्गल ही एक द्रव्य है, ऐसे कि दो पुद्गल इकट्ठे आकर उनका बंध होता है, उसको कहते हैं स्कंध। ऐसे तीन परमाणु इकट्ठे होकर उनका भी स्कंध हो सकता है, चार परमाणु, ऐसे असंख्यात परमाणुओं का एक स्कंध होगा, अनंत परमाणुओं का स्कंध होगा, अनंतानंत परमाणुओं का स्कंध होगा। तो ऐसे स्कंध के अलग अलग जो भेद है तो उसमें विशिष्ट अनंतानंत का बंध होता है, स्कंध होता है, तो उसको कहेंगे आहार वर्गणा। उन आहार वर्गणा में से शरीर की रचना होती है, जो अपना औदारिक शरीर है, वैक्रिक शरीर है, तेजस शरीर है, इनकी रचना होती है। और कोई अलग टाइप के जो उसको वर्गणा कहे, जैसे आहार वर्गणा है वैसे अन्य तेजस वर्गणा है, मनोवर्गणा है, भाषा वर्गणा है और कारमाण वर्गणा है। ये जो कारमाण वर्गणा है जिसमें अनंतानंत परमाणुओं के स्कंद को एक एक वर्गणा कही, ऐसे अनंतानंत वर्गणाओं से ये कर्म बनता है। तो ये जो कर्म पार्टिकल्स ऑलरेडी जीव के सभी प्रदेशों में स्थित है, तो इनका क्या वहां कार्य क्या होता है? तो जीव हर समय राग द्वेष करता है तो नए नए कर्म पार्टिकल्स वहां उसके साथ आकर रहते हैं और उसके निश्चित ड्यूरेशन होती कि इतना काल के बाद वो उदय में आएगा, यानी वो कर्म रूप से फिर अन्य परमाणु रूप हो जाते हैं, तब जीव को उसका फल मिलता है। शास्त्रीय भाषा में कहना है तो जीव मोह राग द्वेष के परिणाम हर समय कुछ न कुछ उसके चल रहे हैं। उसके कारण क्या होता है? नए कर्म आकर जीव से जुड़ जाते हैं, पुराने कर्मों में आकर वो भी इकट्ठे रह जाते हैं, रहते हैं कुछ काल तक, यानी उसका बंध होता है। उसका हम क्या कहेंगे? कर्म का बंध हुआ। तो बंध हुआ तो कुछ जितने परमाणु आए उसको हम कहेंगे प्रदेश बंध। क्या कहेंगे उसको?
प्रदेश बंध।
नंबर ऑफ परमाणु हर समय कितने बनते? अनंत बनते। यहां सारा अनंत में हिसाब होता है। तो ये हुए प्रदेश बंध, नंबर ऑफ परमाणु जितने बंधे उसको क्या कहा हर्षद भाई?
प्रदेश
बंध। बहुत अच्छा। अब उसमें आठ प्रकार की अलग अलग प्रकृतियां होती है, कारमान वर्गणा में भी अलग अलग भेद है, उसके अनुसार आठ कर्म। हमने तो नाम सुने ना, हम जैनी है तो कर्म का नाम भी सुना है हमने जन्म से ही, तो आठ कर्मों के नाम भी कितने ही नहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम देखेंगे अभी। तो ये अलग अलग कर्म रूप से भी परिणमित होते हैं। देखो भोजन तो हम दाल रोटी चावल जो कुछ खाया उसमें से क्या क्या बनता है? वो कैल्शियम है वो हड्डी में चला जाएगा, आयरन है उसके ब्लड बन जाएगा, तो उसमें से अलग अलग जैसे बातें बनती है। भोजन तो एक खाया और उसमें से ये सारे शरीर के कोई स्नायु बनता है, कोई हड्डी बनती है, खून बनता है। ऐसे ही ये जो कारमाण वर्गणा है वो आठ अलग अलग प्रकृति रूप से परिणमित होती है, तो उसको हम कहेंगे ज्ञानावरण आदि दर्शनावरण वगैरह, उसके नाम देखेंगे हम। ये आठ कर्म रूप परिणमित होती है, कर्म को ही यहां प्रकृति कहते हैं। तो पहले तो हमने कितने परमाणु बंधे उसको कहा प्रदेश बंध। आपके पास अभी एक नाम आया है प्रदेश बंध, अब ये दूसरा नाम है प्रकृति बंध। क्या कहा भाई? प्रकृति बंध, यानी वो ज्ञानावरण रूप से प्रकृति परिणमित हुई है कि दर्शनावरण है कि मिथ्या तो प्रकृति बंधी है मोहनी वाली कि और कौन सी है, उसको कहेंगे प्रकृति बंध। अब जो कर्म बंधे है वो कितने साल के लिए, कितने काल के लिए जीव के साथ रहेंगे कर्म रूप से, उसको कहेंगे स्थिति बंध। कितना बेन क्या कहा? स्थिति बंध, यानी ड्यूरेशन, उतने काल तक वो फल नहीं देगा। जब वो खिरने लगे, खिरना है ना क्या कि कर्म रूप से फिर अकर्म रूप हो जाते, अन्य सामान्य परमाणु रूप हो जाते, तब उसका फल मिलता है, उसको हम कहते हैं उदय। जीव के भावों के साथ या संयोगों में जो कुछ उसका हम यहां निमित्त बनता है उसको हम कहेंगे उसका अनुभाग। फल देने की शक्ति कितनी है उसको कहेंगे अनुभाग। क्या कहेंगे इंद्रबिंदु उसको?
अनुभाग
बंध। तो कर्म का बंध होता है, इसका अर्थ क्या होता है? विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु आते हैं उसको हम प्रदेश बंध कहते हैं। बेन ख्याल में आ रहे हैं?
हाँ।
जो कर्म प्रकृतियां बनती है उसको क्या कहेंगे? प्रदेश बंध। बंध तो एक ही हुआ, उसको हम चार प्रकार से समझा रहे हैं। वो जितने काल तक जीव के साथ रहेंगे उसको कहेंगे स्थिति बंध, और उदय में आने पर जो फल देने की उसकी कोई योग्यता है, बंधने के समय ही निश्चित होता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको कहेंगे अनुभाग बंध। बंधने के बाद कुछ काल तक वो रहते हैं जीव के साथ, फिर उदय में आके उसका जो कोई उदय बनना है, फल बनना है, वो बन जाता है। तो हर समय जीव अनंत परमाणुओं का ग्रहण करता है। ग्रहण करता एक कहना है, वो करना वरना कुछ नहीं है उसमें। जीव तो अपने में परिणमित होता है। क्या होता है उसका भी? मोह राग द्वेष रूप परिणमन चल रहा है, तो वहां कर्म स्वयं कारमाण वर्गणा कर्म रूप हो जाती है, और उसके जो ड्यूरेशन पूरे होने पर फिर उसको उदय में आते हैं। तो अलग अलग कर्मों का उदय चलता है वहां पर। जैसे क्रोध कर्म का उदय चला, यहां जीव जब क्रोध करता है तो क्रोध के परमाणु उदय में आते हैं वहां पर। लोभ करता है, माया करता है, अलग अलग, तो ऐसे ऐसे उस वहां उस कर्म का उदय पाया जाता है। ये सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव ने कर्म में कुछ किया है, कर्म ने जीव में कुछ किया, ऐसा बिल्कुल है नहीं है। ये बात मूल में ख्याल में रखकर अभी हम आगे सभी बातें पढ़ेंगे। रोज याद दिलाना जरूरी समझते, क्योंकि क्या है, निमित्त की भाषा हम बोलते हैं तो ऐसा ही लगने लगता है कि ये निमित्त से हो रहा है तो हमें कर्म में कुछ करना चाहिए। क्यों बहन, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कहना कि कर्म में हमारा कुछ नहीं चलता है। हम अपने में रहते हैं तो कर्म अपने आप चले जाते, क्योंकि मुनिराज जब अपने आत्मा में स्थिर होते हैं तो उनमें विशिष्ट कर्म आते ही नहीं है, और जो है ऑलरेडी पूर्व अज्ञान अवस्था में बंधे वो भी अधिक मात्रा में खिर जाते हैं। यही मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष ऐसा ही होता है। क्या होता है देखो, अनादि से क्या था, बहुत सारे कर्म बनते थे, जीव के साथ रहते थे, चले जाते थे। जीव हर समय मोह राग द्वेष करता है, हर समय नए नए परमाणु आते हैं, पुराने में से कुछ चले जाते हैं। ऐसा कब से चल रहा है? अनादिकाल से, जिसको कोई बिगिनिंग नहीं, तब से। अभी तो हम मनुष्य है, इसके पूर्व कोई अन्य पर्याय में थे, उसके पूर्व कुछ अन्य पर्याय में थे, उसके पूर्व हम अभी है। तो जो है यानी अस्तित्व है ना हमारा, तो अस्तित्व गुण कौन से द्रव्य में होता है भाई?
सर्व
द्रव्य में। तो सभी द्रव्य है, जो है उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। तो हम है, इसका अर्थ हम अनादि से ही है, 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 है। तो किसी न किसी पर्याय में तो थे ही। यहां अभी हमारा मनुष्य रूप से जन्म हुआ है, उसके पहले भी हमारा अस्तित्व था कि नहीं? उसके पहले भी था, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था। तो किस रूप में था? तो हमने वो जीव समास में देखा है, कभी निगोद में गया तो कभी कहीं कहीं जन्म लेकर अभी मनुष्य हुआ है। तो अभी भविष्य काल में क्या होगा, आत्मा को पहचानेंगे नहीं तो भविष्य काल तक ऐसे ही चलता ही रहेगा। ये तो मनुष्य पर्याय तो थोड़े दिन की है, फिर त्रिंच में चले जाएंगे, एकेंद्री में चले जाएंगे, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वहीं घूमेंगे। तो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में आत्मा संबंधी हम जानकारी लेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे, तो विशिष्ट कर्म प्रकृतियां बंधेगी नहीं। ये सब बातें यहां चलेगी, सात तत्व के प्रकरण में भी चलेगी। पहले तो मिथ्यात्व सहित सभी कर्म बनते थे, जब आत्मा का अनुभव होता है तो विशिष्ट कर्म बंधना रुक जाएगा। अब जो पूर्व में बंधे थे उसका क्या होगा, वो अधिक मात्रा में खेलेंगे। तो ये पहले तो बंधता था तो उसको आश्रव और बंध कहेंगे। पहले तो खिरता भी था, मैंने जितना बनता था उतना खिरता था, वो नहीं के बराबर था। अभी क्या होगा, बंधना क्रम से रुक जाएगा, उसको संवर कहेंगे, और अधिक मात्रा में खिरेगा उसको निर्जरा कहेंगे। एक पोजीशन ऐसी आएगी, बंध परिपूर्ण रुक जाएगा और जो है वो पूरा पूरा निर्जरित हो जाएगा। तो क्या होगा? मोक्ष, जीव इन इट्स प्योर फॉर्म। वो मोक्ष कहाँ होता है, किधर होता है? यहाँ अपने में होता है कि ऊपर होता है? वो मोक्ष नाम की कोई प्लेस नहीं है, वो जीव की अवस्था है। पूर्व से बंधे हुआ था जीव, परिपूर्ण प्यूरिटी उसकी हो गई, तो अपने में उसका मोक्ष हो गया। तो ऐसी अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान हमें भगवान ने जो बताया है। देखो ये भगवान ही ऐसे है कि ये परिपूर्ण वो खुला बता दिया रहस्य। अरविंद भाई आपका ट्रेड सीक्रेट आप सबको बता देंगे क्या नहीं बताएंगे? तो भगवान ने वो ट्रेड सीक्रेट सबको बता दिया कि देखो ये आप स्वयं भगवान स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो स्वभाव से, और पर्याय में अवस्था में आप सब परमात्मा बन सकते हो। इसकी बात खुल्लम खुल्ला सभी तीर्थंकरों ने तो बताई, सभी आचार्यों ने उसको बहुत आसान करके बताया और सभी ज्ञानियों ने भी उसको बहुत एकदम सहला करके बता दिया। हमको भी मुंह में रखा है, निगलना बाकी है। तो ये बात अभी हम यहां सीखेंगे। तो पहले तो कर्मों की थोड़ी जानकारी ले लेंगे, कौन कौन से कर्म होते हैं, कैसे, उसके नाम तो पहले दो तीन चैप्टर में तो नाम ही नाम है। फिर उसमें आगे जब जीव को जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन ने अपनी स्वयं की पहचान, परद्रव्य ने शरीर से मैं भिन्न हूं, वो भिन्न कैसा हूं उसकी पहचान हो जाना, उसकी प्रतीति हो जाना, श्रद्धान हो जाना, उसको कहेंगे सम्यक दर्शन। तो ऐसा जब होता है, ये सब विचारों में ये ज्ञान में प्रोसेस चलेगा, किसी बाहर की क्रिया से कितनी यात्रा करेंगे, कितने शास्त्र पढ़ेंगे, कितना क्या करेंगे, कैसा बैठेंगे, तो सम्यक दर्शन ये कुछ नहीं है, वो अपने ज्ञान में ही सब लेने से होने वाली बात है। तो जब ऐसा होता है, उसका जीव का विचार चलता है, तो कर्मों में कितने परिवर्तन होते हैं ये सारा यहाँ हिसाब बताया है, क्योंकि ऐसे हिसाब रखने वाला तो कोई है नहीं है, ये ऑटोमेटिक सब सारी व्यवस्था होती है। आजकल तो ऑटोमेटिक युग है ना अपना, तो समझने में आसान है। देखो पहले पृष्ठ से हम शुरू करते हैं यहां पंचलब्धि की। हमने तो अभी तो जैन तत्व परिचय है, कारण कार्य व्यवस्था, उसमें तो द्रव्यानुयोग के सिद्धांत देखे ही थे। उन सिद्धांतों को वस्तु व्यवस्था जिसको कहते हैं, कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय स्वयं में उसके स्वयं के कारण होती है, ये ख्याल में रखकर अभी यहां हम पढ़ेंगे। देखो पृष्ठ एक से दूसरा जो पैराग्राफ है कि ये तत्व ऐसे ही है, अन्य प्रकार नहीं है। कौन से तत्व? जो अभी हमने इस विश्व में छह द्रव्य है, सात तत्व है, उसका कारण कार्य व्यवस्था ऐसी है, निमित्त उपादान, ये जो कुछ पांच समवाय यहां चले भी थे और कुछ चलेगी भी आगे, तो ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है। वस्तु यानी द्रव्य, और उसकी व्यवस्था यानी वो द्रव्य अनादि से जैसा है वैसा टिक कर, वैसा रहकर कायम उसकी अपनी अवस्था अपने में बदलना, ये वस्तु व्यवस्था है। तो ये वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसे पूर्ण विश्वास हुए बिना, उसके अनुसार तत्व निर्णय हुए बिना, तत्व निर्णय हुए ने जो तत्व भगवान ने बताए है वो वैसे ही है। हम पहले अन्यथा मानते थे, मैं शरीर का कुछ कर सकता हूं ऐसा मानते थे, वैसा नहीं है। ऐसे हुए बिना हमारी निमित्ताधीन दृष्टि छूटती नहीं। दृष्टि यानी मान्यता, निमित्ताधीन यानी निमित्त से ही कार्य होता है, ये जो हमारी मान्यता है वो किसी ने सिखाई नहीं है। जब हम तत्व का अभ्यास करते हैं तो हमें विशिष्ट दृष्टि से देखने की आदत हो जाती है, फिर वो निमित्त से कार्य नहीं होता है, अपनी उपादान शक्ति से, निज शक्ति से होता है, ये बात ख्याल में आती है। वो कैसे आएगी? तत्व निर्णय से। तत्व निर्णय कैसे होगा? ज्ञान में ही वो विचार चलेंगे कि भगवान ने तो ऐसा बताया है, मैं तो ऐसा मानता था, तो इससे ही कार्य होने वाला है, इसके लिए कुछ उटपटांग बातें करनी ऐसी बात नहीं है। हम स्कूल में जाते अभ्यास करते हैं तो वो बातें हमारे ज्ञान में आती, उसके लिए हम कितना उपवास करते हैं। क्यों रमेश भाई, अंग्रेजी सीखने के लिए कितने उपवास किए थे आपने? तो अभ्यास से हो जाता है ये सारी बातें। ज्ञान मैं उपवास का निषेध नहीं कर रही हूं, परंतु उपवास से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। तो उपवास क्यों करते हैं? परीक्षा आती तो आप कम क्यों खाते हैं? ये बच्चों को पूछना हमारे। तो अभ्यास में ध्यान लगता है तो जागना है तो सहज में उसकी वो तो कम हो जाता है, वहां सिखाना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही जो आत्मा की जिसको रुचि लगती है तो वो बाकी बातों में से समय बचाकर इसी में लगा रहेगा, तो उसके उपवास आदि भी सहज क्रिया होती है, उसका अभी विषय नहीं अपना। तो यहां क्या कहते हैं, ये तत्व निर्णय तो ज्ञान में ही होगा सब, जब तक इस जीव की निमित्ताधीन दृष्टि है, यानी निमित्त से कार्य होता है, भगवान मेरा कुछ कर देंगे। भगवान को नमस्कार क्यों करते थे हम बचपन में? परीक्षा में पास कर दो। और अभी क्यों करते हैं?
धन मिल जावे।
तो निमित्त से कार्य होता है, निमित्त नहीं मिला इसलिए मेरा कार्य नहीं हो रहा। देखो, हमें कोई उपदेश देने वाला नहीं मिला इसलिए हमने ये जाना ही नहीं था अब तक। क्या कहते? ये बातें हमारी समझ में नहीं आई अभी तक। क्यों? अरे उपदेश ही नहीं मिला। हम भी कहते अरे हमें बहुत लेट मिला, उम्र की 30-35 साल में मिला, पहले मिलता तो हमने क्या माना? ये कोई उपदेश देने वाला नहीं मिला इसलिए हमको नहीं पता चला। उपादान से चर्चा हम करेंगे तो अरे अपनी ज्ञान की योग्यता नहीं थी तो ऐसा निमित्त भी नहीं मिला। ये कितना समाधान हो जाता है। नहीं तो हमारी आदत इतनी है निमित्त की ओर देखने की, या ऐसा ऐसा बीमारी हुआ, वो बीमारी ठीक नहीं हुआ, बीमारी ठीक नहीं हुई, कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? डॉक्टर। क्यों डॉक्टर साहब? तो यहाँ इसको छोड़कर किस डॉक्टर के पास जाना है? तो हम निमित्त की ओर से ही मानते भी है। ऐसा नहीं कि निमित्त नहीं है, ऐसा नहीं कि बीमारी हो जाए और डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये बात नहीं कह रही मैं। परंतु वहां जो कोई ठीक होने का कार्य चलेगा, किसमें होगा ठीक? शरीर में। वो किसकी योग्यता से होगी? शरीर की योग्यता से। क्योंकि शरीर की योग्यता बिना नहीं होता ना। कभी कभी ऑपरेशन बहुत अच्छा कर देते डॉक्टर और ऊपर के जख्म हीलिंग नहीं होता, स्टिचेस हील नहीं होते। क्यों नहीं हो रहे? हाँ वो तो कुछ शरीर की वैसी योग्यता, अभी कोई उसके लिए निमित्त और ढूंढेंगे, इन्फेक्शन हुआ ये हुआ। परंतु वहां भी वो शरीर अपनी योग्यता से वहां चलेगा, फ्रैक्चर हो जाता है और प्लास्टर लगाते ऊपर से। क्यों बिना बे? प्लास्टर में से हड्डी जुड़ती है ना, तो हड्डी अपने से अंदर से जुड़ेगी, वो प्लास्टर बाहर लगाया है। प्लास्टर में से कुछ नहीं आता अंदर। वैसे ये जो सारे उपवास आदि जो है ना, चरणानुयोग के नियम, उसमें से आत्मानुभव नहीं होने वाला है। वो तो बाहर का इन्फेक्शन नहीं लगे, इसलिए वो सारे सदाचार वगैरह जो होते हैं ना, वो तो ऊपरी इलाज है, पट्टी है। परंतु इनकेस अंदर वो बंदूक की गोली या फॉरेन बॉडी है, कोई कांटा भी चुभ गया है, और इंदुबेन आप भी डॉक्टर है ना, ऊपर से आप लगा लो बहुत अच्छा और डिस इन्फेक्ट सब इन्फेक्शन निकाल के, अंदर पूरा वैसा ही पड़ा है, क्या होगा? आप कहेंगे वो तो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर का इन्फेक्शन तो रह गया है और ऊपर हमने बहुत बढ़िया प्लास्टर लगा दिया, तो वो कभी ठीक नहीं होने। वैसे ही अंदर मिथ्यात्व तो चलता है और ऊपर चरणानुयोग का प्लास्टर लगा दिया, पट्टी सब कर दी, तो क्या होगा? अरे वो मिथ्या मान्यता और पनपेगी अंदर। क्यों? सही मान्यता की नहीं है और बस आचरण सुधर दिया है और हम मानेंगे हमने तो अच्छा किया है, तो वो मान रहा है कि मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं, और अंदर तो जो पहले इलाज करना था मान्यता का वो रह गया करना, तो उसकी मिथ्या मान्यता ऐसी चलती रहेगी, और बाहर तो पुण्य किया है तो स्वर्ग का भोग मिल जाएगा एकाद, आगे क्या होगा? आगे जो होने वाला है वो कि स्वर्ग में से भी चयकर एक इंद्रिय में जा सकता है जी। तो ये बातें हमें अभी मनुष्य पर्याय में, और हम इतने भाग्यशाली है, ऐसे निकृष्ट काल में उत्कृष्ट उपयोग हमारे उत्कृष्ट जो उपदेश है वो हमें प्राप्त है आज, क्योंकि ऐसे काल में ऐसा उपदेश प्राप्त होना भी बहुत पुण्य के उदय बिना नहीं मिलता है। ये भी निमित्त का कथन है। अपना अपनी योग्यता है ज्ञान की कि ऐसा उपदेश हमें जिज्ञासा अंदर से होती है और सहज रूप से ऐसे मिल जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो ऐसे जब तक निमित्त की दृष्टि नहीं छूटेगी तब तक प्रत्येक द्रव्य की स्वाधीन सहज स्वयंपूर्ण कार्य क्षमता और कार्य व्यवस्था इस जीव के ख्याल में नहीं आती। क्या कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य की जो कार्य व्यवस्था है, पर्याय अपने में होती है, वो स्वाधीन है, किसी दूसरे के कारण रह गई ऐसा नहीं है, सहज है। सहज यानी बिल्कुल वो अनादि से अनंत काल तक की एक एक द्रव्य की पर्याय सुनिश्चित है, वो द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली है, बिल्कुल वो उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पुद्गल का भी कार्य अपने में होता है, वो तो अचेतन है, हम क्या समझते हैं, हम तो जानने वाले हैं ना, सोच समझ कर हम कार्य करते हैं, इसलिए हमारा कार्य हो रहा है कि नहीं? क्यों रमेश भाई, आपने इतना सारा व्यवस्था की कि नहीं? तो हर एक पर्याय निश्चित होती है, जो जितना जहां लेट होना है, जो कोई फ्लाइट चूकनी है, क्यों बहन? क्योंकि हम अपने क्रियावती शक्ति से गमन करके आए हैं, और फिर हम और किसी को दोष दे नहीं है, ये तो एयरलाइन वाले ऐसे है वैसे सब कुछ चलेगा ऐसा। तो जब हम अपनी उपादान शक्ति से देखते तो हम कितने निराकुल भी हो जाते, लौकिक में भी जो हमें निराकुलता प्राप्त होती है। तो यहां तो कहते हैं ये सहज है, स्वयं पूर्ण है, अपने में परिपूर्ण है, सेल्फ सफिशियंट है, कार्य क्षमता, कार्य करने की जो योग्यता प्रत्येक द्रव्य में है, और ऐसी ही उसमें व्यवस्था बनी है। जब तक ये बात हमारे ख्याल में नहीं आती है, तब तक हम चिंता आकुलता से तो व्यग्र ही रहते हैं, तो इस बात को उनका विश्वास नहीं होता है। बाकी तो हमने देखी कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका कार्य अपने अपने में होता है। अब ये तो यहां जनरल चर्चा की है शुरू में, अभी दूसरे पृष्ठ पर आते हैं, दूसरा पैराग्राफ। शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन, यानी जो हम शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका प्रयोजन, उसका हेतु क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, क्यों इसकी आवश्यकता क्या है? तो कहते हैं कि विवक्षित विषय संबंधी जानकारी हासिल करना नहीं है, अपितु उसके द्वारा स्वयं का स्वरूप पहचानना। कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे हम, अभी चार अनुयोग देखे हमने, तो उसका प्रयोजन क्या है, पढ़ना क्यों, तो अपना स्वरूप पहचानना है। तथा पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न, मैं स्वयं कैसा हूं, अन्य द्रव्यों से भिन्न हूं, ये शरीर पुद्गल है, इससे मैं भिन्न हूं, और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न हूं। मेरे गुण कौन से, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, उस गुण में मैं हूं, अपने से अभिन्न पर से भिन्न। समयसार की भाषा में कहना है, क्या कहना है, पर से विभक्त और अपने से अभक्त, एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दर्शाऊंगा, ऐसे कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, शिष्यों को समझाते हैं। एकत्व ने अपने गुण पर्याय से एकत्व है, मैं अपने में स्वयं पूर्ण एक हूं, और पर से भिन्न हूं, पर से विभक्त हूं। पर यानी हम ये धन दौलत बच्चे, उससे भिन्न उसकी बात नहीं चल रही है, उसकी तो है ही है, ये भी पर है शरीर, तो इसको हमने पर माना ही नहीं है कभी, तो इससे मैं पर हूं और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न हूं, ये बात समझनी है यहां पर। अपने अभेद निज शुद्धात्मा का अनुभव करना ही उसका प्रयोजन है, यानी आत्मा की अनुभूति करना, इसी को सम्य दर्शन कहेंगे आगे, यही उसका तात्पर्य है। इसीलिए कहा कि प्रत्येक शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है। अभी उसके भी ये जो चर्चा है, आपने यहाँ इसको पढ़ा है यहाँ पर कि इसको नहीं लिया है शुरू की चर्चा? हाँ,
दो लिए थे।
हाँ, कोई बात नहीं। हाँ,
दो प्रकार लिए, भी थोड़ा सा
अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखो तीसरे पृष्ठ पर अभी गुजराती में, अच्छा, भगवान महावीर की ओमकार ध्वनि मिला। भगवान महावीर की ओमकार रूप दिव्य ध्वनि खीरी, कब खीरती है मालूम, कब खीरी थी? देखो केवल ज्ञान हुआ, हर तीर्थंकर उनका तो ऐसा नियम है, केवल ज्ञान होता है, समोशरण की रचना होती है और उनकी दिव्य ध्वनि खीरती है उसी दिन। महावीर के बारे में क्या हुआ था मालूम,
स्वामी आए और 6 महीने के बाद,
6 महीने के 66 दिन के बाद, 66 दिन के बाद दिव्य ध्वनि खीरी थी। कौन से दिन, अभी अष्टानिक हुआ ना, आठम से पूनम तक, आषाढ़, हाँ, और आषाढ़ वदी एकम, हिंदी भाषा में श्रावण वदी एकम, क्यों भाई हिंदी वाले, ये हिंदी और गुजराती में फर्क है मालूम है कि नहीं? मन नहीं मालूम, अच्छा सुन लो फिर, दोनों भाषिक जो है वो शुद्ध महीने शुक्ल पक्ष, उसका नाम तो वही है, जैसे चैत्र शुद्ध एकम से पूर्णिमा तक तो हिंदी भाषी की भी कहेंगे चैत्र शुद्ध चैत्र शुक्ल चल रहा है, और गुजराती मराठी भी कहेंगे चैत्र शुक्ल चल रहा है। जब चैत्र वदी आता है ना तो उसको हिंदी भाषी क्या कहते हैं, वैशाख वदी। वदी में एक महीने का डिफरेंस है क्योंकि वो पूर्णमासी को मास पूर्ण हुआ समझते हैं। पूर्णमासी पूर्ण यानी पूर्णिमा कहते ना, वो कहते हैं पूर्णमासी, और अमावस्या ने आधा मास हुआ तो वो आधा मास वो पहले गिनते हैं। नहीं समझे?
लेकिन होते तो बारह मास ने
वो तो वही है दिन तो वही है, जैसे महावीर की दिव्य ध्वनि खीरी ऐसा कब कहेंगे, तो हिंदी भाषी कहेंगे श्रावण वदी एकम को, और हम यानी मराठी गुजराती क्या कहते हैं, आषाढ़ वदी एकम को। दिन वही है। दिवाली कब आती है भाई? अभी आसोवद मास। और आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं झगड़ी नहीं, वो कहते ही ऐसा है क्योंकि उसके आगे का वदी चालू होता है ना, कार्तिक वदी कहेंगे वो। ख्याल में है ना? दिन वही है कहने की नहीं, ये पद्धति है, और हमें ख्याल में नहीं आता तो हमारा कंफ्यूजन होता है बहुत बार, क्योंकि पूजा में हम पढ़ते जब वो अष्टानिका नंदीश्वर की पूजन पढ़ते ना, उसमें क्या है, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत आठ दिन माही नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे इह ठाई, यानी स्वर्ग के जो इंद्रादिक है वो नंदीश्वर द्वीप जाकर वहां की पूजन करते हैं, वहां कृत्रिम चैत्यालय है। कब? कार्तिक के अंतिम आठ दिन, फाल्गुन के अंतिम आठ दिन, और आषाढ़ के। तो अंतिम आठ दिन यानी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, आठम से पूर्णिमा तक, तो वो उनके आठ अंतिम दिन हो गए, क्योंकि हिंदी भाषी उसको अंत समझते महीने का, और हमारा अंत तो अमावस्या का होता है। ख्याल में ना, ये तो कथन का डिफरेंस है, दिन तो वही के वही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्तिक वदी के बाद कार्तिक सुदी आएगा।
हाँ, उनके पहले वदी आता है फिर सुदी आता है, और हम तो पहले सुदी कहते फिर वदी कहते हैं।
जैन कैलेंडर में भी जुदू जुदू आप।
हाँ, तो वो देखना कि गुजराती वाले छपा है वो हिंदी भाषी यानी उत्तर प्रदेश में छपा है।
नहीं, ये आता था, मैं बहुत कंफ्यूज होता।
हाँ, कंफ्यूज होता है ऐसा क्यों कि वो तो तीर्थंकरों के कल्याणकों में भी होता है ना ऐसे, तो ये समझना कि वो समझना महीने का डिफरेंस होता है। वदी वाला कोई आता है तो एक महीने का डिफरेंस लगता है, हमको लगता है डिफरेंस नहीं उसमें।
आसो वद अमास आपने दिवाली आवे,
हाँ,
तो ये वक्त हिंदी भाषी
कार्तिक वद अमास कहेंगे।
कार्तिक वद
एक दिवस कार्तिक वद अमास हुए।
हाँ, ख्याल है ना। हाँ, तो कन्फ्यूजन हमें लगता है ऐसा क्यों लिखा है, तो ये उसका सिंपल सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ते भगवान महावीर के ओमकार रूप दिव्य ध्वनि खीरी, तो कब खीरी थी? छासर दिन के बाद, तो आषाढ़ वदी एकम, हिंदी वाले कहेंगे श्रावण वदी एकम। वही युग का प्रारंभ भी उसी दिन होता है, काल बदलता है ना, जैसे चौथा काल शुरू हुआ कौन से काल में, वो आषाढ़ वदी एकम को चालू हो गया। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि कब छूटी? छासर दिन के बाद, केवल ज्ञान तो उनको पहले हुआ था और अभी जाके उनके दिव्य ध्वनि छूटी। तो गणधर आए इसलिए छूटी कि नहीं छूटी? वो निमित्त का कथन है। तो महावीर भगवान के कारण छूटी कि नहीं छूटी?
अपने कारण तो छूटी है, अपने उपादान से छूटी।
किसके उपादान से?
महावीर
भगवान के।
आप क्या?
आत्मा का उपादान का, भाषा वर्गण का उपादान, दिव्य ध्वनि क्या है, आवाज क्या है, पुद्गल है। तो भाषा वर्गणा उस रूप परिणमित हुई, तो भाषा वर्गणा का उपादान उस रूप परिणमित, उसमें निमित्त रूप से महावीर भगवान को भी निमित्त में रखना, उनका वचन योग है वहां पर, नहीं तो हमारी भी दिव्य ध्वनि कहलाएगी क्यों? वो केवल ज्ञान के निमित्त से छूटती, उसी को कहेंगे दिव्य ध्वनि, ऐसे ही निमित्त होते हैं। फिर भी वो उसका उपादान हमें ख्याल में आना चाहिए कौन है उसका। तो भगवान महावीर की ओमकार रूप दिव्य ध्वनि खीरी, उसे सुनकर गणधरों ने बारह अंगों की अर्थात द्रव्य श्रुति की जिनागम की रचना की। ये कहने का प्रयोजन क्यों है? ये भगवान की, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, और गणधर ने अंगों की रचना की, वो हम तक अभी तक चल जा रहे। उसका उगम कहाँ तक है, कहाँ से है, सर्वज्ञ की ये वाणी है और इसलिए वो सच्ची है, इसलिए वो प्रमाण है, स्टैंडर्ड है, ये बात हमको समझनी है। अनेक वर्षों तक यह ज्ञान आचार्यों की परंपरा से चलता आया, परंतु काल दोष से उसमें अधिकतर ज्ञान का लोप हुआ। पहले तो मौखिक उपदेश चलता रहा और वहां इतना इंटेलिजेंस कि एक बार सुन पूरा उनका याद होता था, 12 अंक पूरे। अत्यंत अल्प ज्ञान बाकी रहा जो षटखंडागम नाम से प्रथम ही लिखित रूप से अस्तित्व में आया। दर्शन नाम के आचार्य हो गए, उनको ये बात ख्याल में आ गई कि अभी ये तो काल दोष से और ये नष्ट होने वाला है, तो उन्होंने ये मुनियों के संग से दो लायक ऐसे शिष्यों को बुलवाकर तो उनसे ये उनको पढ़ाया और उन्होंने ये लिखित रूप से षटखंडागम की रचना की। ये षटखंडागम ओरिजिनल जो लिखित रूप से शास्त्र है और फिर उसमें धवला जय धवला आदि उसकी रचनाएं, उसके ऊपर टीकाएं भी बाद में हो गई है। इसमें इसे प्रथम श्रुतस्कंद, श्रुत की शाखा, श्रुतस्कंद कहते हैं। इसमें जीव और कर्म संबंधी विस्तृत विवेचन है। ये कुंदकुंदाचार्य ने भी इस पर विस्तृत टीका लिखी थी जो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी हम आगे बढ़ेंगे।
काल दोष, काल को क्यों दोष कहते
हैं? देखो, काल दोष काल का दोष नहीं है, फिर भी ये कथन पद्धति है। अभी पंचम काल चल रहा है, शुरू में तो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद अभी कोई केवली नहीं रहे, बाद में तीन केवली तो हुई, अनुबद्ध केवली जिसको कहते थे। महावीर को मोक्ष हुआ, उसी शाम को गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हुआ। जब उनके मोक्ष हुआ तो सुधर्म स्वामी को हुआ, फिर उनका मोक्ष हुआ तो वहां पर जम्बु स्वामी हुआ। तो ये तो उसके बाद श्रुत केवली भी रहे, यानी पूरे द्वादशांग का ज्ञान जिनको था, ऐसे आचार्य भी बहुत सारे हुए। उसके बाद वो भी उनका भी लोप हुआ, फिर और भी कम ज्ञान वाले रह गए। अभी आज की तारीख में हम देखते हैं ना, ये हमारे पास षटखंडागम है, धवला है, जय धवला है, मां धवला है, ये सब श्रुत है, तो हम कितने इसका अभ्यास करते हैं, तो हमारी रुचि अन्य बातों में हो गई और ये ज्ञान अभी लुप्त सा हो गया, तो हम क्या कहेंगे, काल दोष ऐसा ही चल रहा है कि हमारा ज्ञान कम हो रहा है। ये काल का दोष नहीं, उसका नहीं है, परंतु अभी इस काल में तो ऐसे ही होने वाला ही है, तो आगे चलकर वो तो चलेगा, भले पंचम काल के अंत तक चलेगी ये बात चलेगी, छठे काल में तो ये भी नहीं रहने वाला है, तो इसको काल दोष कह दिया। पंचम काल की अपेक्षा से इसको काल दोष कहेंगे। ये जो पद्धति होती है कथन की, काल ने कुछ नहीं किया है, तो इस काल में ऐसी बातें होती है तो उसको काल दोष कहने में आता है। देखो अभी हम ये तो यहां तो जनरल बातें हैं, देखो आपका प्रश्न है प्रथम श्रुतस्कंध और द्वितीय श्रुतस्कंध में क्या डिफरेंस है, या अलग अलग उसका विषय भी अलग है क्या? वैसे तो है ही है, क्योंकि ओरिजिनल जो आगम कहां से कौन सी बातें ली है उसका बहुत बड़ा चार्ट है, ये धवला ग्रंथ में उसके चार्ट सब है, तो कौन कौन से, क्योंकि इतने सारे है ना, 12 अंग थे, कौन से अंग के उसके भी और जो भेद है, कहां से ये बातें चली है, डायरेक्ट मूल सूत्र जहां से चले आ रहे उसको कहा था वो प्रथम श्रुतस्कंध। द्वितीय श्रुतस्कंध ये जो तीसरे पृष्ठ पर अंत में लिखे है, आगम की दूसरी शाखा जिसको द्वितीय श्रुतस्कंध कहते हैं, उसके परंपरा में आगे चलकर समयसार, प्रवचनसार, नियमसार जो हम कहते नहीं, तो आध्यात्मिक जो ग्रंथ है उसको द्वितीय श्रुतस्कंध कहा। अष्टपाहुड़े, पंचासिका आदि अन्य अनेक शास्त्रों की रचना हुई। ये प्रथम श्रुतस्कंध जो प्रथम रचना हुई थी षटखंडागम था, और ये द्वितीय श्रुतस्कंध में ये जो अन्य जो रचना है मूल आगम से ही ओरिजिनेट है ये सब, तो वो पहली शाखा और ये दूसरी शाखा, शाखा ने वो बड़ी शाखा, फिर उसके बहुत सारे जो जितने सारे ग्रंथ है इन दो में ही विभाजित हो जाए। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखो छठे पृष्ठ पर आते हैं। अभी जो इसमें चला गया उसमें तो ऐसा ही लिखा है, वो कर्म का और जीव का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। तो उसको हम कहेंगे नहीं, जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म को उपशमाया। जब हम कहते केवल ज्ञान हुआ तो क्या किया महावीर भगवान ने, चार घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये कथन तो ऐसा ही होगा। भगवान ने क्या किया था, तो भगवान तो अपने में लीन हो गए मुनि अवस्था में, तो उन्हें अपने में लीन होते होते केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। और उस समय कर्मों में क्या हुआ, वो कर्म स्वयं अपने से ही वो बंधे हुए अवस्था में से पूर्ण रीति से निकल गए, पूर्ण निर्जरा हो गए उसका। तो हम कहेंगे उसको घाती कर्मों का उन्होंने क्षय कर दिया। कथन तो ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही सहज सहज फिर का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कार्य तो हर समय उपादान से ही होता है, और उस समय जो कोई वहां निमित्त है उस कार्य के अनुकूल वो सहज वहां पाए जाते हैं, उसको ना जुटाया जाता ना हटाया जाता है। हमारी सारी कोशिश निमित्तों पर कुछ ना कुछ करने की होती है, परंतु हमें निमित्त हो गए वहां पर, परंतु कार्य उपादान से होता है, तो अपने द्रव्य का उसकी शक्ति का लक्ष्य करेंगे तो ये पर्याय में भी ये सहज रूप से स्वभाव पर्याय शुरू होगी समय दर्शन आदि की। ये सारी यहां पहले चर्चा की है। तो छठे पेज पर तो कर्मों की जहां चर्चा होती है तो निमित्त रूप से वहां होगी, और जीव के परिणामों का विवेचन मिला, वही पृष्ठ है ना गुजराती में भी मिला दूसरा पैराग्राफ
जीवना गुजराती थे ना।
पांचवें में आप एक गुजराती पुस्तक लेना इनके पास, तो आपको पेज नंबर बताएंगे, आप वहां से ले लेना। अच्छा वो देखना है आपको। देखो फिर उसके भी पहले का ले लो, हमारे इस स्व सामर्थ्य क्या, उसके पहले का देखना है आपको,
उसके पहले में है कारण।
ये नियम सार वाली बात है। अच्छा ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे
पांचवे पृष्ठ में तीसरी लाइन।
पांचवे पृष्ठ में नियम सार में, हाँ नियम सार में तो बारंबार कहा है कि शुद्ध कार्य
स्वभाव।
अच्छा वो देखना है आपको। देखो फिर उसके भी पहले का ले लो, हमारे इस स्व सामर्थ्य क्या, उसके पहले का देखना है आपको,
उसके पहले में है कारण।
ये नियम सार वाली बात है। अच्छा ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे
पांचवे पृष्ठ में तीसरी लाइन।
पांचवे पृष्ठ में नियम सार में, हाँ नियम सार में तो बारंबार कहा है कि शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय। शुद्ध कार्य का अर्थ क्या है, स्वभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय ने जैसा जीव का स्वभाव है वैसे पर्याय में प्रकट होना, उसको कहेंगे स्वभाव पर्याय। जैसे राग द्वेष हमारी विभाव पर्याय है, राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो ये विभाव पर्याय। और स्वभाव क्या होगी, वीतरागता। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना, वीतरागता उत्पन्न होना, ये स्वभाव पर्याय कहेंगे। तो यहां कहते हैं स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती उसका कारण तो द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। क्यों त्रिकाल विद्यमान है, जो कोई पर्याय होती है, हमने देखा था एक कोई द्रव्य है उस द्रव्य की अनादि से अनंत काल की पर्याय सुनिश्चित है, वो द्रव्य अपने स्वयं के उपादान शक्ति से उस पर्याय रूप से परिणमित होता है। तो शुद्ध पर्याय का कारण कहाँ होगा, द्रव्य में विद्यमान है, आत्मा में ही विद्यमान है। अभी हम आत्मा की चर्चा करते हैं तो ये नहीं समझे। देखो देखो अभी कोई पुद्गल परमाणु है, ये हमने ये हरे रंग का एक ये क्लिप है प्लास्टिक, तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। अभी वर्तमान में इस किसी एक विशिष्ट पुद्गल परमाणु की हरे रूप होने की, वो प्लास्टिक रूप होने की यहां योग्यता है, अपनी योग्यता से उस इस अवस्था में विद्यमान है। अनादि से क्या इसी अवस्था में था, अरे वहां तो प्लास्टिक का इन्वेंशन ही नहीं हुआ, तभी इन्वेंशन हुआ इसलिए प्लास्टिक रूप परिणमित हुआ कि नहीं? नहीं, इसमें योग्यता थी। तो ये इस सभी वर्तमान काल में 2007 में ये प्लास्टिक रूप से हरे रंग में विद्यमान है, तो ये अवस्था इसमें इसी टाइम उत्पन्न हो ऐसी शक्ति कब से पड़ी है? अनादि से पड़ी है। आदिनाथ के ज्ञान में उस परमाणु की वैसी अवस्था है, और ये अनंत काल के बाद इस परमाणु की कौन सी अवस्था होगी वो भी उनके ज्ञान में अभी वर्तमान में है। तो ये जो योग्यता है प्रत्येक द्रव्य में अनादि अनंत पड़ी है, योग्यता रूप से अनादि अनंत है, और उस पर्याय कब होगी? जिस समय वो पर्याय रूप से है उस समय उसको हम पर्याय कहेंगे, बाकी वो क्या कहलाएगी? योग्यता। तो हमारे में भी आप में भी केवल ज्ञान की योग्यता है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो किस समय होगी वो भी योग्यता है कि नहीं है? तो वो कारण कहाँ पड़ा है? द्रव्य में। और हम क्या समझते हैं? अरे हमारे कर्म हट जाएंगे तो हमको केवल ज्ञान। ये हमारी मान्यता छोड़नी और कुछ नहीं, हमें कर्म में कुछ करना ही नहीं है, हमें सीधी जो मान्यता उल्टी थी उसको सही रूप से स्वीकार करना, यो भी करना की बात होती है। जब हमको ज्ञान होता है तो वो सही रूप सहज हो जाता है, हमारी जो कोई खोटी मान्यता है वो चली जाती है। सही ज्ञान होना ही खोटी मान्यता का त्याग है, उसके लिए और कुछ अन्य बातें नहीं करनी पड़ती। ये तो यहां तो हम इंट्रोडक्शन रूप से अभी कुछ बातें देखी है, अभी तो हमारा समय होने को आया है, बाकी चर्चा हम आगे करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।